ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। भारत ने अमरीका में क्वाड रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में आलमी तरक्की, अमन और सलामती के लिए अपने नजरिए का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सबकी शमूलियत वाले और खुशहाल भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई क्वाड के अज्म को उजागर किया। वजीर आजम मोदी आज रात देर गए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के मैदान में इश्तराक को फरोग देने के लिए बड़ी अमरीकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। नेशनल पीपल्स पावर के रहनुमा अनुरा कुमारादिस्तनायके ने श्रीलंका के सदारती इंतखाब में जीत हासिल की है। ईरान के सूबे खुरासान में कोयले की कान में एक गैस धमाके में कम से कम 51 अफराद हलाक हो गए और भारत ने हंगरी में शतरंज ओलंपियाड में सोने के 2 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। भारत ने अमरीका के शहर डेलावेयर में क्वाड रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में आलमी तरक्की, अमन और सलामती से मुतालिक अपने नजरिए का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक आजाद, खुले और सबकी शमूलियत वाले नीज खुशहाल भारत बहरुल काहिल के तई क्वाड के अपने अज़्म को उजागर किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस ग्रुप से सेहत, टेक्नोलॉजी और आबो हवा की तब्दीली के मैदान में इकदाम को आगे बढ़ाते हुए जाब्तों पर मबनी एक बैन अलावामी नज्म और अमन इस्तेहकाम को मदद मिलती है।
हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनाव और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं।
न्यूयॉर्क से वजीर आजम के इस दौरे की खबरें देने वाली हमारी नामा निगार हिमानी राणा ने बताया।
अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ 6वें क्वाड शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन किया है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में साझा लोकतांत्रिक लोकाचार के साथ क्वाड भागीदारों का एक साथ आना मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्वाड भागीदारों का एक साझा उद्देश्य रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। यात्रा के दौरान की गई प्रमुख घोषणाओं में शामिल है क्वाड कैंसर मूनशॉट, मैरिटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, मैत्री, 2025 में क्वाड एट सी, शिप ऑब्जर्वर मिशन, क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप। भारत द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं में शामिल है मॉरिशियस के लिए एक अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल की स्थापना और हिंद प्रशांत क्षेत्र के छात्रों के लिए एक नई क्वाड स्टेम फेलोशिप। क्वाड एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए नेताओं ने क्वाड विल्मिंगटन घोषणा को भी अपनाया है। न्यूयॉर्क से आकाशवाणी समाचार के लिए हिमानी राणा।
वजीर आजम के दौरे में मालूमात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने ऐलान किया कि भारत 2025 में क्वाड रहनुमाओं की मीटिंग की मेजबानी करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमरीका के दौरे के पहले दिन वो डेलावेयर में आला सतह की दोतरफा मुलाकातों और क्वाड रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त मसरूफ रहे। हमारे नामनिगार भूपेंद्र की एक रिपोर्ट।
नई दिल्ली से 15.5 घंटे की उड़ान के बाद फिलाडेल्फिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का हवाई अड्डे और उनके होटल में भारतीय प्रवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। यह बातचीत जो बाइडेन के विल्मिंगटन स्थित घर में हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान काफी गर्मजोशी देखी गई। बैठक के दौरान श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और अमेरिका आज एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी निभा रहे हैं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की। साथ ही हिंद प्रशांत सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के प्रयास के तौर पर अमेरिका ने भारत से चुराई और तस्करी कर लाई गई 297 कलाकृतियों को लौटाने का फैसला किया। दिन का मुख्य कार्यक्रम क्वाड लीडर समिट अर्चमेर एकेडमी में आयोजित किया गया, जो राष्ट्रपति बाइडेन का विद्यालय था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समय दुनिया तनाव और संघर्ष से जूझ रही है और ऐसी विषम परिस्थितियों में साझा लोकतांत्रिक विचारों और मूल्यों के साथ क्वाड में भागीदार देशों का एक एक साथ एक मंच पर आना मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्वाड को क्विक यूनिफाइड असिस्टेंस डिलीवरी कहा। उन्होंने कहा कि क्वाड एक ऐसी साझेदारी है जो मानवता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लंबे समय तक बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा का पहला दिन राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित रात्रि भोज के साथ समाप्त हुआ।
वजीर आजम मोदी आज रात देर गए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शोबे में इश्तराक को फरोग देने के मकसद से बड़ी अमरीकी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे। वो न्यूयॉर्क में भारतीय वक्त के मुताबिक आधी रात के बाद भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। कल जनाब मोदी अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मुस्तकबिल की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में एक बेहतर कल के लिए कसीर मुल्की तरीकेकार पर तवज्जो दी जाएगी। भारत ने अमरीका में डेलावेयर के मकाम पर माहौलियात के साजगार और मुनसिफाना मईशत से मुतालिक समझौतों पर दस्तखत किए हैं जो अपनी नौइयत के पहले मौहदे हैं। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में खुशहाली के लिए भारत बहरुल काहिल इकतसादी फ्रेमवर्क के तहत इस समझौतों का तबादला किया गया। जनाब मोदी क्वाड सरबराह मीटिंग के लिए अमरीका के तीन दिन के दौरे पर गए हुए हैं। साफ सुथरी मईशत से मुतालिक इन मुआहदों का मकसद तकनीकी तआवुन, इफरादी कुव्वत के फरोग, सलाहियत साजी और तहकीकात से मुतालिक इश्तराक में इजाफा करना है। हरियाणा में इंतखाबी मुहिम उरूज पर है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को रागिब करने के लिए रैलियां कर रहे हैं। जेजेपी लीडर और डबवाली के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला ने आज सिरसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि रियासत इस बार एक मुअल्लक असेंबली की तरफ बढ़ रही है। अलबत्ता उन्होंने वाजे किया कि वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने आज सिरसा के चौटाला गांव में एक मीटिंग से खिताब की जहां उन्होंने डबवाली हलके के कांग्रेस उम्मीदवार अमित सिहाग की हिमायत में मुहिम चलाई। कुमारी शैलजा की बीजेपी में शामिल होने की क्यासाराइयों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी की एक सीनियर और जिम्मेदार लीडर हैं। इसी दौरान मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर मनोहर लाल ने जगाधरी में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत की। अपने खिताब में साबिक वजीर आला ने कहा कि हरियाणा की तारीख बताती है कि मरकज में जिस पार्टी की सरकार होती है वही पार्टी रियासत में सरकार बनाती है। हरियाणा में आला इंतखाबी अफसर पंकज अग्रवाल ने कहा है कि मिसाली जाब्ता अमल के खिलाफ वर्जी से मुतालिक शिकायतों को सी विजिल ऐप पर 100 मिनट के अंदर अंदर दूर किया जा रहा है। इस ऐप के जरिए लोग शवाहिद के तौर पर ऑडियो, वीडियो और फोटोज अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि शहरियों की बेदारी की वजह से हरियाणा में 16 अगस्त से आज 22 सितंबर तक कुल 12,011 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें से 11,122 शिकायत जायज पाई गई और जाब्तों के मुताबिक इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई भी अंजाम दे दी गई है। हरियाणा के आला इंतखाबी अफसर ने बताया कि कोई भी फर्द या सियासी पार्टी इस ऐप पर मिसाली जाब्ते अमल की खिलाफ वर्जी से मुतालिक कोई शिकायत दर्ज करा सकती है। ये शिकायत इस ऐप पर इंतखाबी अमल के दौरान किसी भी वक्त दर्ज कराई जा सकती है। इंतखाबी अफसरान सी विजिल ऐप के जरिए इंतखाबी सरगर्मियों पर करीबी नजर रख रहे हैं और जहां कहीं मिसाली जाब्ते अमल की खिलाफ वर्जी पाई जाती है वहां इसकी रोकथाम की कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार ने उन तलबा की 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम रिफंड की है जिन्होंने मुल्क भर के मुख्तलिफ कोचिंग इदारों में यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आईआईटी और दीगर दाखला जाति इम्तिहानात के लिए अपना इंदराज कराया था। सारिफीन के उमूर के महकमे ने आज कहा है कि 656 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कौमी सारिफीन हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज कराकर कोचिंग मराकज और प्राइवेट इदारों से रिफंड का दावा किया था। सारिफीन के उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा कि सरकार सारिफीन और खास तौर पर उन तलबा के हकूक के तहफ्फुज के लिए पाबंद अहद है जिन्होंने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कीमती वक्त और वसाइल लगाए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस कदम से सरकार के इस अहद की एक बार फिर यकीन दहानी होती है कि कोचिंग इदारे मुनसिफाना सलूक और सारिफीन के हकूक का एहतराम करें। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि महकमे के मुदाखलत के बाद ये रिफंड मुल्क भर के मुतासिर तलबा को फौरी तौर पर वापस कर दिए गए हैं। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। ये दफ्तर भारत में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद खित्ते की कंपनियों के लिए खसूसी राबता मरकज का काम करेगा जिससे मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक को फरोग हासिल होगा। وزیراعظم نریندر مودی نے اس مہینے سنگاپور کے اپنے دورے میں یہ دفتر قائم کرنے کا اعلان کیا تھا. سنگاپور میں یہ دفتر انویسٹ انڈیا کا پہلا بیرون ملک دفتر ہے. جناب گوئل نے اس موقع پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ دفتر سنگاپور اور وسیع تر آسیان خطے کے ساتھ اقتصادی تعاون کو مستحکم بنانے کی ہماری کوششوں میں ایک نیا باب ہے. دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ کل نئی دلی میں نیشنل کیڈٹس کور این سی سی کے مشترکہ ریاستی نمائندوں اور ڈپٹی ڈائریکٹرز جنرل کی کانفرنس کی صدارت کریں گے. کانفرنس کے دوران تبادلہ خیال میں اہم توجہ حال ہی میں منظور کیے گئے توسیعی منصوبے کے نفاذ پر ہوگی، جس کا مقصد این سی سی کیڈٹس کی قوت کو 3 لاکھ تک بڑھانا اور اسے 17 لاکھ سے 20 لاکھ کرنا ہے. کانفرنس میں شریک وفود، ٹریننگ اور کیمپنگ کے نئے بنیادی ڈھانچے قائم کرنے کی غرض سے پالیسیوں کو بہتر کرنے، مالی ضرورتوں کو پورا کرنے اور متعلقہ طرفین کے درمیان تال میل کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کریں گے. بہار میں گنگا اور دوسری ندیوں میں پانی کی سطح میں اچانک اضافے کی وجہ سے سیلاب سے تقریباً 13 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں. پٹنہ، بیگو سرائے، ویشالی، کھگڑیا، سارن، مونگیر اور بھاگلپور سمیت 12 اضلاع سیلاب سے بری طرح متاثر ہیں. بہار کی پڑوسی ریاستوں میں گنگا کے نشیبی علاقوں میں تیز بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں سیلاب آ گیا ہے. مشرقی ریلوے نے مسافروں کے تحفظ کے پیش نظر 8 ریل گاڑیوں کو منسوخ کر دیا ہے، جبکہ 20 سے زیادہ ریل گاڑیوں کا راستہ تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی بحریہ کل سے گوا کے بحری جنگی کالج میں گوا کے سمندر سے متعلق 5ویں سمپوزیم کی میزبانی کرے گی. وزارت دفاع نے بتایا کہ گوا میری ٹائم سمپوزیم کا مقصد بھارت اور بحر ہند خطے کے اہم ملکوں کے درمیان اشتراک سے متعلق سوچ، تعاون اور باہمی مفاہمت کو فروغ دینا ہے. سری لنکا میں نیشنل پیپلز پاور کے لیڈر انورا کمار دسنائی کے صدارتی انتخاب جیت گئے ہیں. انہوں نے دوسرے مرحلے کی گنتی کے بعد اپوزیشن پارٹی سماگی جنبال ویگیا کے لیڈر سجیت پریمداسا کو ہرا دیا ہے. چناؤ کمیشن نے مزید کہا ہے کہ موجودہ صدر رانل وکرما سنگھے چناؤ ہار گئے ہیں. ووٹوں کی گنتی دوسرے مرحلے میں اس وقت پہنچ گئی جب پہلے مرحلے میں کوئی بھی امیدوار مطلوبہ 50% ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہا. صدارتی انتخابات کے لیے کل ووٹنگ ہوئی تھی، جسے انتخابی کمیشن نے ملک کی تاریخ میں سب سے پرامن انتخاب قرار دیا ہے. مشرقی ایران کے جنوبی خراسان صوبے میں کوئلے کی ایک کان میں گیس دھماکے میں کم سے کم 51 افراد ہلاک ہو گئے. ذرائع ابلاغ کی اطلاع کے مطابق کل رات 9 بجے تبس کے مدنجو کان میں میتھین گیس کے رساؤ کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا. دھماکے کے وقت کان کے 2 حصوں میں 69 مزدور کام کر رہے تھے. 20 سے زیادہ مزدور زخمی ہوئے ہیں اور یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے افراد اس میں پھنسے ہوئے ہیں. امریکہ میں الاباما کے شہر برمنگھم میں افسوسناک اجتماعی فائرنگ کے ایک واقعے میں 4 افراد کے ہلاک اور درجنوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے. مقامی پولیس حکام نے کہا ہے کہ یہ واقعہ کل آدھی رات کے قریب پیش آیا اور 4 افراد جائے حادثہ پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر 8 افراد کا مقامی اسپتال میں علاج چل رہا ہے. پولیس کو شبہ ہے کہ فائرنگ کے اس واقعے میں 1 سے زیادہ افراد کے ملوث ہیں، جس کی تفتیش جاری ہے. بھارت نے ہنگری کے شہر بوداپسٹ میں جاری شطرنج اولمپیاڈ میں سونے کے 2 تمغے حاصل کر کے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے. مردوں اور خواتین کی دونوں ٹیموں نے سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے. اوپن سیکشن میں بھارت نے یہ خطاب اس وقت حاصل کیا جب مقابلے کے آخری مرحلے ارجن ایریاگاسی نے سلووینیا کے جن سوبیل جی کو شکست دی. ٹھیک اسی وقت دوسرے نمبر پر موجود چین نے اپنے مقابلے میں امریکہ کے خلاف اپنا اہم پوائنٹ گنوا دیا اور اس طرح بھارت نے خطاب جیت لیا. اوپن زمرے کے لیے بھارتی ٹیم میں گوکیش ڈی، پرگنانند، ارجن ایریگائسی، ودیت گجراتی، پینتالا ہری کرشن اور سرینات نارائن شامل ہیں. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے امریکہ میں کواڈ رہنماؤں کی کانفرنس میں عالمی ترقی، امن اور سلامتی کے لیے اپنے نظریے کا اظہار کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے سب کی شمولیت والے اور خوشحال بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں کواڈ کے عزم کو اجاگر کیا. وزیر اعظم مودی آج رات دیر گئے جدید ترین ٹیکنالوجی کے میدان میں اشتراک کو فروغ دینے کے لیے بڑی امریکی کمپنیوں کے سی ای او سے ملاقات کریں گے. نیشنل پیپلز پاور کے رہنما انورا کمار دستانائکے نے سری لنکا کے صدارتی انتخاب میں جیت حاصل کی ہے. ایران کے صوبے خراسان میں کوئلے کی کان میں ایک گیس دھماکے میں کم سے کم 51 افراد ہلاک ہو گئے. اور بھارت نے ہنگری میں شطرنج اولمپیاڈ میں سونے کے 2 تمغے جیت کر تاریخ رقم کی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.